मेरे अत्यंत आत्मीय युवा मित्रों नमस्कार। आज 20 सितंबर 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान युवा साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अभी अक्टूबर नवंबर और नेक्स्ट ईयर मार्च की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इनमें से एक स्टूडेंट अक्टूबर नवंबर के लिए हैं और दो स्टूडेंट मार्च की क्लासेस के लिए हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं राकेश कुमार गुर्जर का जो लाडिया गांव से हैं जिनका जिला है अलवर राजस्थान से। इन्होंने अक्टूबर नवंबर बैच के लिए एडमिशन लिया है। तो राकेश आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही मार्च के बैच के लिए स्वागत करता हूं शुभम कुमार जो लखीसराय बिहार से हैं और राणा का जिनका गांव है अत्रेठ जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। तो शुभम और राणा आप दोनों मित्रों का भी मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज कुछ सूचनाएं, हालांकि इस तरह की सूचनाएं मैं शुक्रवार को आप लोगों को देता हूं लेकिन इस बार शुक्रवार को मैं आप सबसे नहीं मिल सकूंगा और उसका कारण यह है, आप जानते हैं कि शुक्रवार को गजेटेड हॉलीडे है, आप लोगों से भेंट नहीं हो सकेगी। शनिवार और रविवार को तो वैसे भी भेंट नहीं होती है, यानी तीन दिनों के गैप के बाद सीधे सोमवार को आप लोगों से मुलाकात होगी। इसलिए जो सूचनाएं मैं शुक्रवार को देता हूं वो सूचनाएं मुझे आज ही आप सबको देनी है और सूचना ये है कि शुक्रवार शनिवार और रविवार इन तीनों दिन डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा लेकिन शुक्रवार और शनिवार को आपको बकायदे प्रेस क्लिपिंग्स मिलेंगी जैसे कि मिलती रही, उनमें कोई तब्दीली नहीं है और ठीक इसी तरह से आपको योजना और कुरुक्षेत्र के आपको आर्टिकल मिलते रहेंगे। टोटल चार आर्टिकल्स आपको दिए जाते हैं जिसमें दो हिंदी के होते हैं दो इंग्लिश के होते हैं और आपने गौर किया होगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के टाइटल एक ही होते हैं यानी कि उनका अनुवाद होता है। जो आर्टिकल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं तो और अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं तो मैं वो दोनों आर्टिकल्स आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। इसके बाद आपको करेंट कंटेंट दिए जाते हैं जिसमें अंग्रेजी के अखबार में छपे किसी एक आर्टिकल का वो केवल अनुवाद ही नहीं होता बल्कि एडिटेड फॉर्म में होता है, यानी वो ऐसा होता है जो सिविल सर्विस के लिहाज से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, यानी कि वो बकायदे संपादित अंश होता है। और इसके बाद फिर एक दोस्तों वीकली क्वेश्चन होता है जो मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है और साथ ही साथ हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों ये कुछ खबरें थी, सॉरी ये कुछ सूचनाएं थी और अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और मुख्य विषय के तहत आज हम लोग तीन तलाक पर जो अध्यादेश है उसके बारे में बातें करेंगे। मित्रों लेकिन पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। कल के अखबार में आप लोगों ने एक छोटी सी खबर पढ़ी होगी और वो ये कि आजाद भारत की जो पहली महिला आईएएस ऑफिसर थी अन्ना मल्होत्रा वे नहीं रहीं। 1951 बैच की थी, तमिलनाडु कैडर की थी और जिस समय वो सर्विस में आई थी उस समय मद्रास प्रांत उन्होंने लिया था और बाद में आपको मालूम है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जब 1956 में हुआ है अब वर्तमान जो हमें स्टेट दिखाई दे रहे हैं वो तब अस्तित्व में आए तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि 1951 बैच की तमिलनाडु कैडर की वो ऑफिसर थी और खासकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मित्रों सबसे पहले तो मैं अन्ना मल्होत्रा जी को आप सब की ओर से एकेडमी की पूरी टीम की ओर से मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा और ईश्वर से हम सब प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे क्योंकि वो आजाद भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर रही हैं। तो हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए चूंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, हो सकता है कि इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो इसलिए मैंने उनके नाम को शामिल किया है, थोड़ा सा आप बस ध्यान में रखिएगा। एक बात मुझे आप सबसे और करनी थी मित्रों कि कभी कभी आपने देखा होगा कि मैं कहता हूं कि आज कोई खबर नहीं है, राइट? मतलब न्यूज आपने सुनी, रेडियो न्यूज, दूरदर्शन की न्यूज भी देखी और पता लगा कि मैं कह रहा हूं कि आज कोई ऐसी खबर नहीं है जिस पर बात की जा सके। तो आप लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि यार बेकार ही हो गया, बेकार रेडियो में 15 मिनट लगा दिए, बेकार के डीडी न्यूज सुनने में 1 घंटा खराब कर दिए। मित्रों, थोड़ा सा आप अगर ऐसा सोचते हैं तो इसे दुरुस्त कीजिए। दुरुस्त इस मायने में कि आपका समय खराब नहीं हुआ है। ज्ञान की प्रक्रिया को समझिए। हम केवल चीजें सुनते रहते हैं, हम केवल चीजें देखते रहते हैं, बहुत सी चीजें हम केवल पढ़ते रहते हैं, हम उन्हें ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, हम उन्हें ध्यान से सुनते नहीं हैं, हम उन्हें ध्यान से देखते नहीं हैं और दोहराते भी नहीं हैं। लेकिन ये मान करके चलिए कि जो क्रिया भी आपने इस तरह की है वो आपके दिमाग में दर्ज हो गई है। आपको नहीं पता कि वो कब सामने आकर आपकी मदद करेंगी, आपको नहीं पता है और वो करती हैं। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भाई ये चीज हमने कब सुनी थी, कब पढ़ी थी, कब देखी थी, नहीं समझ पाते हम। बस ये लगता है कि हाँ हाँ ठीक है, अंदर से आई है तो अंदर कहीं ना कहीं होगी ही। जैसे कल अगर आपने रेडियो ही न्यूज सुनी तो आपने देखा कि रविशंकर प्रसाद जी ने कैबिनेट डिसीजन के बारे में कुछ बातें बताई और उसी में से एक बात थी कि बांधों के मरम्मत के लिए कैबिनेट ने अनुमति दी है, कुछ पैसा रिलीज किया है, राइट, कुछ धन की स्वीकृति दी है। 195 बांध देश में है या कुछ इस तरह का आंकड़ा उन्होंने दिया था, तो उनकी मरम्मत के लिए फिर उन्होंने थोड़ी सी डिटेल बताई। अब मैंने इसको अपने न्यूज में नहीं लिया है, मैंने अभी न्यूज एनालिसिस में नहीं लिया इसको, लेकिन आपने सुना, मैंने भी सुना। अब देखिए कि क्योंकि अभी जो केरल में बाढ़ आई थी उस बाढ़ का कारण यह बताया जा रहा है ज्यादातर, जो मुख्य कारण है कि बांधों का प्रबंधन ठीक नहीं था। ठीक है, थोड़े समय में बहुत ज्यादा बारिश हो गई, वो एक संकट का कारण रहा, लेकिन बाढ़ से जो पानी छोड़ा गया वो सही मैनेजमेंट के तहत नहीं छोड़ा गया और ज्यादातर जो संकट हुआ है वो बाढ़ से बांध से पानी छोड़ने के कारण हुआ है। तो अब ये जो पैसा दिया गया है वो बांधों के मैनेजमेंट के लिए दिया गया, चाहे मरम्मत की बात हो या जो भी जिस काम में भी लगे वो। तो अब ये देखिए कि किस तरीके से जो केरल में प्राकृतिक आपदा आई है उससे ये जुड़ गया है। तो अगर कोई इस तरह के प्राकृतिक आपदा या केरल में जो बाढ़ का संकट पैदा हुआ उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो एक सिंपल सी ये जो खबर है ये आपके काम आ सकती है। आप एक वाक्य में लिख सकते हैं कि सरकार इसके बारे में चिंतित है और कैबिनेट ने बकायदे इसके लिए कुछ राशि जारी की है जिसमें देश भर के बांधों की व्यवस्था में सुधार की जाएगी। बस बात खत्म हो गई और इसी से एग्जामिनर को लग जाएगा कि ये जो स्टूडेंट है ये वास्तव में अपने समय के प्रति बहुत सतर्क है। और याद रखिए, सिविल सर्वेंट होने के नाते आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने समय के प्रति बहुत अलर्ट रहेंगे, उसमें कोई माफी नहीं है, उसमें कोई रियायत नहीं है, राइट फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप जो कुछ भी सुनते हैं बस उस समय ध्यान से सुनिए और भूल जाइए, जो महत्वपूर्ण है उनको रिपीट कर लीजिए, उन पर ज्यादा ध्यान दे दीजिए, दैट्स ऑल। तब आप सही मायने में जो न्यूज सुन रहे हैं, जो न्यूज देख रहे हैं, उनके साथ न्याय कर पाएंगे। और स्पेशली अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों आइए अब आज मैं मुख्य विषय पर आता हूं और हमारा मुख्य विषय 3 तलाक पर अध्यादेश। कल इस पर डीडी न्यूज में इस पर डिस्कशन भी हुआ था। जो 3 तलाक पर अध्यादेश लाने की नौबत आई है इसे थोड़ा सा देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी आपकी होगी तो आप बड़े आराम से इसे जानते होंगे। लोकसभा ने पारित कर दिया था और इससे पहले की घटना आपको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे ये कहा कि ये जो 3 तलाक का मामला है ये बेसिकली समानता और स्वतंत्रता के खिलाफ है, महिलाओं का इससे एक प्रकार से अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सरकार को चाहिए कि इस पर कानून बनाए। क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को तो कानून बनाने का अधिकार कम से कम नहीं ही है। हाँ, ये बात अलग है कि वो जो डिसीजन देती है वो कानून का काम करती है। उसको लेकर के फिर केंद्र सरकार ने बकायदे एक अधिनियम बनाया, वो लोकसभा से विधेयक तैयार किया, वो विधेयक बकायदे लोकसभा से पारित भी हो गया लेकिन राज्यसभा से वो पारित नहीं हो सका क्योंकि राज्यसभा में अभी जो वर्तमान सरकार है उसका बहुमत नहीं है, वो विधेयक गिर गया, अधिनियम नहीं बन पाया, राइट। लेकिन सरकार को ऐसा लग रहा था कि नहीं, इस कानून की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का बहुत जबरदस्त रूप से हनन करता है, राइट। अब विधेयक पारित हो नहीं पाया तो तो अब सरकार क्या करे, तो सरकार के पास मतलब ये जानिए आप कि, और आपको मालूम होगा कि एक संवैधानिक अस्त्र है और वो अस्त्र है अध्यादेश का। अध्यादेश का अगर सरकार को लगता है कि कोई कानून बनाना बहुत जरूरी है और हमारे हमारा संसद अभी अधिवेशन में नहीं है और अधिवेशन में है तो संसद उसे रिजेक्ट कर देती है, तो फिर ऐसे मामलों में वो अध्यादेश ला सकती है सरकार, और सरकार लेकर आई है। अब आपको अध्यादेश वाले चैप्टर की अच्छे से मित्रों तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं अध्यादेश के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं, कब लाया जाता है, इसका कब तक की अवधि होती है, आगे की क्या प्रक्रिया होती है, कब तक यह अध्यादेश जारी रह सकता है और फिर से लाने के लिए क्या प्रक्रियाएं हैं, प्लीज इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है अध्यादेश एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपका जो नजरिया है बहुत स्पष्ट होना चाहिए, माइन्यूटली होना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ऊपरी तौर पर नहीं पूछा जाएगा सरकार अध्यादेश कब लाती है, वो उसमें डेफिनेटली कुछ न कुछ बारीक चीज ऐसा डालेगी कि आप भ्रमित हो जाएंगे। तो इसकी बहुत अच्छे से तैयारी आप कर लीजिएगा। अब ये तीन तलाक पर अध्यादेश आ गया है। आज के अखबारों में देखिए काफी कुछ दिया हुआ है कि तीन तलाक के इस अध्यादेश में क्या प्रावधान किए गए हैं। मित्रों एक जो खास कर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, अखबारों में तो आप उसके प्रोविजंस पढ़ लेंगे, उसको दोहराने से क्या फायदा है, और इतना तो मुझे चाहिए कि आप लोगों से भी मैं मेहनत कराऊं, आप लोगों के लिए भी छोड़ूं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि तीन तलाक इतने समय से भारत में चल रहा है, दुनिया के 22 देशों में नहीं है, जो मुस्लिम देश है वहां तीन तलाक का मामला नहीं है, भारत में है, राइट। और मजेदार बात यह है कि अभी तक यह कहा गया है कि यह हमारे कुरान में लिखा गया है, मतलब बकायदे हमारे धार्मिक ग्रंथ में इसकी स्वीकृति है या इस बात को कहा गया, ये पहले ये कहा जाता था। सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रहा था तो उसने कहा, जो इसके पक्ष में जो लोग हैं कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट जो अगर कुरान में लिखा गया है धार्मिक ग्रंथ में तो हमें प्रमाणित कीजिए, ला करके दिखाइए, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सके। और बहुत से जो इसके विशेषज्ञ हैं, जो इसके ज्ञाता हैं कुरान के, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कुरान में ऐसा कोई विधान नहीं है। इसका मतलब है कि जो कुरान का अभी तक जो इंटरप्रिटेशन किया जा रहा था तीन तलाक के मामले को लेकर के, वो सही नहीं था। मित्रों मैं उदाहरण कुरान का इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम तीन तलाक के बारे में बात कर रहे हैं, ये केवल कुरान के साथ ही नहीं है, यानी कि केवल इस्लामिक धर्म ग्रंथ के साथ ही नहीं है, सच पूछिए तो ये सभी धर्म ग्रंथों के साथ है। क्योंकि जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, जो ओरिजिनली लिखे गए हैं, वो जिस भाषा में लिखे गए हैं उस भाषा के जानकार बहुत कम हैं, जो जानकार हैं उनकी भाषा कुछ दूसरी हो गई है। तो हम जो वास्तव में अपने ग्रंथों के बारे में या अपने धर्मों के बारे में जान पा रहे हैं वो मध्यस्थों के बारे में जान पा रहे हैं कि वो जैसा बता देते हैं हम वैसा समझ लेते हैं, चाहे वो हमारे वेद हों, चाहे वो हमारे पुराण हों, कुछ भी हो, चाहे वो हमारे उपनिषद हों, हम ओरिजिनल पढ़ते नहीं हैं क्योंकि हम पढ़ नहीं सकते, हमारे पास वक्त भी नहीं है और हमारी जरूरत भी नहीं है। देखिए आम जनता तो विश्वास करती है, अपने लोगों पर विश्वास करती है जिन्हें वो ज्ञानी मानती है, जिन्हें संत मानती है, जिसे आध्यात्मिक पुरुष मानती है, जिन्हें अपना नेतृत्वकर्ता मानती है, उनकी बातों पर विश्वास करती है। और किस तरीके से ये जो धार्मिक नेतृत्व है वो अपने हितों के लिए चीजों का गलत इंटरप्रिटेशन करता है। मित्रों चूंकि आप सब युवा हैं तो मुझे लगा कि इसके माध्यम से मुझे ये बात आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि जब भी समाज में कुछ इस तरह की स्थितियां आती हैं तो थोड़ा सा समय लगा करके आप ओरिजिनल फॉर्म में उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ठीक है चलिए कोई कह रहा है तो आप तुरंत रिफ्यूट मत कर दीजिए, आप बकायदे उनकी बात को सुनिए, उन सम्मान के साथ स्वीकार कीजिए और कहिए कि ठीक है मैं देखता हूं, और फिर ओरिजिनल थोड़ा सा ढूंढिए, मेहनत कीजिए। मुझे लगता है कि यह समाज के लिए बहुत ही हितकारी होगा। और अगर आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे लगते हैं जो भ्रमित करने वाले हैं, जिनका एक्सप्लेनेशन आप ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, दूसरों से उसके बारे में विचार कीजिए, तर्क वितर्क कीजिए, उनके एक्सप्लेनेशन लीजिए। मुझे लगता है कि ऐसा करके हम अपने पढ़े लिखे होने का धर्म निभा पाएंगे और साथ ही साथ अपनी सामाजिक भूमिका भी अदा कर पाएंगे। तो दोस्तों तीन तलाक के बारे में बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, पार्थ गढ़वी जो मांडवी कक्ष गुजरात से हैं, जावेद साहब, जावेद अख्तर, ओंकार कुमार, सूर्य नारायण पांडे मोतीगंज उत्तर प्रदेश से, सुब्रत चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल से, मनोरंजन भारती बिहार से, और तेज राम उमरे, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करना चाहूंगा। तीन दिन की इजाजत मांगते हुए और साथ ही साथ एकेडमी की अपनी पूरी टीम, मैडम प्रीति अग्रवाल, और अपनी ओर से आप सबको इन तीन दिनों की शुभकामनाएं देते हुए नमस्कार।